Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samita Vasal Mimatao, Isni Vivendo, Aat Sarubandhu. Taittiriya आरण्यक के माध्यम से ओंकार की उपासना विषय को प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत क्रमशः संगीता आदि की चर्चा करते हुए मेधा आदि की कामना की चर्चा जपार्थ की गई और होम के लिए जो है श्री आदि की कामना की चर्चा की। तत्पश्चात स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस ओंकार की व्याहृत रूप से उपासना करने का विधान यहां किया गया। तो किस प्रकार से हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी, उसके लिए साधन की साध्यता और साधन रूपता दोनों का यहां निरूपण कर रहे हैं। स्वराज्य ही जिसका साध्य है और संकेत किया उसकी साधना क्या है, तो कहने लगे व्याहृत रूप से जो ओंकार है उस ओंकार की उपासना करना। तो व्याहृतियों को हम सामान्यतया सभी लोग जानते हैं कि भू भव और स्व यह तीन व्याहृतियां प्रसिद्ध हैं। चौथी जो व्याहृति है उसे हम जब शास्त्र का अनुशीलन करते हैं, शास्त्र के माध्यम से श्रवण आदि करते हैं, तब हमें पता चलता है कि चौथी व्याहृति भी, तो मूल रूप से तीन व्याहृतियां हैं जिन्हें तीन मात्राओं के रूप में संकेत किया गया और वहीं पर चौथी मात्रा का भी संकेत किया और चौथी मात्रा को लेकर के कहीं पर उसे तुरीय नाम दिया गया, कहीं पर अर्धचतुर्थ मात्रा करके कह दिया गया और कहीं पर उसे मह नाम से। अब यहां पर जब साधना करते हैं तो हमें साधन को ठीक ढंग से समझना पड़ता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की यात्रा हो या अन्य कोई कार्य हो, और उस कार्य की हम सफलता जो है निर्विघ्न यदि चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता, पहले हमारी दृष्टि साधन पर जाती। यात्रा करनी है तो गाड़ी को पहले देखना पड़ेगा, इसमें तेल सही है, ब्रेक आदि सही है ना, इसकी चाल सही है, टू टायर इसके सही हैं अथवा नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी साधन की दृष्टि से संकेत किया कि हमें भी अपने साधन को पहले देखना है। साधन यदि हमारा ठीक है तो हमारा साध्य भी हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात हम अपने लक्ष्य को लक्षित कर लेंगे। तो साधन की चर्चा करते हुए यहां संकेत किया साधन क्या है, तो क्रम से जो है साधन की रूपता को बतलाया, जप भी कह दिया, लक्ष्मी कामना भी कह दी और अब स्वराज्य की चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये जप जो है वो साधन की सिद्धि के लिए, जप जो है वो साध्य की सिद्धि परंपरा मान सकते हैं, लेकिन जप किस लिए है, तो साधन की सिद्धि के लिए। साधन की सिद्धि क्या, तो साधन की सुदृढ़ता। साधन की सिद्धि क्या होनी है, साधन की सुदृढ़ता। और इसी प्रकार से लक्ष्मी की कामना है वो भी साधन की सुदृढ़ता के लिए। जब हमारा साधन सुदृढ़ होगा तो हमारी यात्रा भी ठीक होगी और हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। और साध्य क्या है, तो साध्य के लिए संकेत कर दिया स्वराज्य। तो स्वराज्य की प्राप्ति करनी है, अब उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने साधन को ठीक करना। तो इसलिए जो है यहां पर श्रुति भी, श्रुति के भाष्य को करने वाले भगवत्पादाचार्य आचार्य शंकर भी संकेत करते हैं, पहले तो हमें क्या समझना होगा, तो कहने लगे हमको ये समझना होगा यहां पर इस प्रकरण में तो कहने लगे संहिता क्या है, अर्थात संधि क्या है। तो संहिता क्या है, संधि क्या है, तो संधि का तात्पर्य इतना समझें, संधि का मतलब है वर्ण द्वय का योग। सामान्य तरह से हम जब समझते तो क्या समझते हैं, वर्ण द्वय का योग। अब कहने लगे वो तो वर्ण द्वय का योग है, लेकिन यहां प्रकरण में संधि का क्या तात्पर्य हो, तो यहां पर भी संकेत करते हैं। जो हमारे अंदर एक जीव भावना है और एक ईश्वर भावना है, एक हम जीव की सत्ता को स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और इन दो सत्ताओं को लेकर के हमारा मार्गन हो रहा है। अब कहने लगे ये जब तक दो रहते हैं तब तक द्वंद बना रहता है, और जब तक द्वंद रहता है तब तक क्या होता, तो कहने लगे द्वंदैर विमुक्तः सुख दुख संगई। जब तक द्वंद है तो द्वंद कैसे, द्वंद जो है वो अकेले नहीं रहते, खाली नहीं रहते, कुछ लेकर के रहते हैं। क्या लेकर के रहते हैं, उन्होंने भी अपना साथी बना रखा है। कहा किसको साथी बनाया, कहा सुख और दुख। जब तक ये द्वंद्वता है तब तक चक्रार पंक्ति पंक्तिर्व गच्छति भाग्य पंक्ति आदि शब्द सुनते रहते, तब तक कभी सुख और कभी दुख, ये जो क्रम है तब तक चलता रहता। द्वंद्वता जब तक रहेगी तब तक इनकी निवृत्ति होने वाली नहीं। अब हम चाहते हैं कि हम इन सुख और दुखों से निवृत्त हो जाएं और शांति को, परम सुख को हम प्राप्त कर लें। तो कहने लगे यदि ये लक्ष्य तुम्हारा है, यदि ये चाहते हो, यदि सुख दुख में ही मौज है तब तो ठीक है, और यदि इससे निवृत्त होना चाहते हो और निवृत्त होकर के चाहते हो कि हमें जो है परम सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए कि फिर वो जिसमें दुख न आ सके, तो ऐसे यदि सुख को चाहते हो तो कहने लगे इसके लिए संधि की जरूरत है, संधि की जरूरत है। मनी ये जो द्वंद है इन दोनों को निर्द्वंद बना देना है, निर्द्वंदता में ही सुख मिल सकता है, निर्द्वंदता में ही स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। जब तक द्वंद्वों से युक्त रहोगे तब तक कहने लगे वह सुख मिलने वाला नहीं। तो ऐसे स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए, द्वंद्वता से रहित होने के लिए संहिता की आवश्यकता है, संधि की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता। इसलिए पहले ही चर्चा कर दी गई संधि संहिता, उसके बाद कहा यह संहिता कैसे होगी, ये संधि कैसे होगी। तो आप संधि के प्रकरण में जानते हो, तो शिक्षा को लेकर के वहां प्रकरण चलाता उसमें बतलाया, जहां दो वर्णों के मध्य में वर्णों का विविधान न हो, अन्य वर्णों का विविधान न हो, तो वहीं पर संधि हो सकती है। यदि दो वर्णों के बीच में कोई अन्य वर्ण पड़ा हुआ है तो वहां संधि संभव नहीं, वहां संधि नहीं हो। ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत करते, यहां पर भी यदि संधि चाहते हो, योग चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा। कहा जीव और ईश के बीच में जो कुछ भी पड़ा है वही है विवधान। इस जीव और ईश के बीच में जो चीज पड़ी है, चाहे उसे कामना कहो, चाहे उसे मोह कहो, चाहे उसे लोभ कहो, चाहे उसे आसक्ति कहो, ये सब क्या है, कहा यही है विवधान। अब ये विवधान जो है वो किसके द्वारा है, चाहे उसे अविद्या कहो, माया कहो, अज्ञान कहो, भ्रम कहो, कुछ भी, जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होगी, इनसे ये रहत नहीं होंगे, तब तक इनका योग होना संभव नहीं।
इसलिए जो मध्य में स्थिति है उस मध्य की स्थिति को अर्थात उस अवरोध को उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। अब जब उस पर्दे को हम हटा देंगे तो दोनों का योग हो जाएगा, तो संधि हो जाएगी। और ज्यों ही संधि होगी, तो संधि का मतलब है पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण दोनों वर्णों के साथ में एक रूप आदेश का हो जाना, एक रूपता हो जाना, तो एकत्व हो जाना। तो कहने लगे ये कैसे होगा, तो कहने लगे इसके लिए जो बीज के पहले जो है वर्ण हैं उन्हें हटाओ। ठीक इसी प्रकार से जीव और ईश का मिल जाना, जीव और ईश का एक हो जाना, ये कब होगा, तो कहने लगे सीधा कह दो कि बीच में जो जगत पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ, कहा जगत पड़ा हुआ, संसार पड़ा हुआ, इस संसार की विविधानता निवृत्ति हट जाए। वो संसार क्या है तो आप जानते हो, मैं मेरा तेरा आदि जो कुछ करके उसी को लेके सारा कुछ आता, आसक्ति लोभ आदि जो भी आते उसी को लेके। तो कहा इनकी इस संसार की निवृत्ति हो जाए, तो कहने लगे किसी चीज को निवृत्त करने से पहले जो हमारा अवरोधक है, जो हमको सताने वाला है, जो हमें दुख देने वाला है, या जो हमारा शत्रु है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तब हम दुख से निवृत्त होंगे। लेकिन शत्रु को हटाने से पहले करना क्या पड़ेगा, शत्रु को समझना पड़ेगा, इसके पास कैसे अस्त्र हैं, कैसे शस्त्र हैं। और जो है यदि आप ये नहीं समझोगे और शत्रु के पास जाओगे तो क्या करेगा, पराजित कर देगा। इसलिए इसके पास कैसे अस्त्र हैं, कैसे शस्त्र हैं, कैसे अस्त्र शस्त्रों से ये लैस है, और जब ये आप समझोगे और समझ करके फिर उन अस्त्र शस्त्रों का काट समझना पड़ेगा, इन शस्त्रों को हम कैसे काट सकते हैं, इसके लिए हमारे पास भी दृढ़ शस्त्र चाहिए। उस शस्त्र को काटने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दृढ़ शस्त्र चाहिए जो शस्त्र को काट सके। तो अब देखो जगत का शस्त्र क्या है, जिसे संसार कहते हो उसका शस्त्र क्या है, जिस शस्त्र के द्वारा वो हमें क्या करता है, सता रहा है, तो क्या कहो, नहीं संगता आदि असंगता, तो उसके लिए दृढ़ शस्त्र हो जाए, उसे काटने वाला हो जाएगा। तो जो हमको जिससे सता रहा है तो क्या है, आसक्ति आदि मोह ममता लोभ क्रोध, ये सब जो है शस्त्र उसके पास आ गए। और मूल में क्या है, ये सारे शस्त्र है नखा भी शिल्पी कौन है, बनाने वाला कौन है, ये शस्त्र भी उसको कहां से मिले, कहा उसके ठिकाने उसकी फैक्ट्री को ही पकड़ लो, और फैक्ट्री को पकड़ लोगे, फैक्ट्री को ध्वस्त कर दोगे तो सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाए। तो कहा वो क्या है, कहा वो तो है माया नाम की फैक्ट्री या अज्ञान नाम की फैक्ट्री, ठीक है। तो कहने लगे उसको पहले समझो, और वो अज्ञान नाम की फैक्ट्री जो है वो किस प्रकार से उसका निर्माण करती है सब समझ लो, और जब ये समझ लोगे तो उसी पर प्रहार कर दो, और उस पर प्रहार कर दोगे तो उसके लिए प्रहार करने के लिए अपने में बल भी चाहिए, और वो सुदृढ़ बल चाहिए, और आपको विश्वास हो कि हाँ इस बल के द्वारा हम इसको नष्ट कर, तब जाकर के आप उसकी निवृत्ति कर सकोगे। और जैसे ही उसकी निवृत्ति होगी तो ये बीच का जो व्यवधान था वो दूर हो गया, और दूर हो गया तो ईश और जीव के योग में कोई फिर है विविधा बाधा नहीं रह गई, और वहां ईश और जीव का योग हो जाएगा। जैसे ही ईश और जीव का योग हुआ तो योग होते ही क्या मिल जाएगा, स्वराज्य की सिद्धि हो जाए। इस चीज को बतलाने के लिए पहले जो है सारे के सारे जगत की स्वरूपता का वर्णन कर रहे हैं, जगत का रूप क्या है, और जगत ही नहीं जितने भी लोक आदि हैं उन सारे लोक आदियों को भी बतला कहा, लोक आदि जो हैं ये किसका बल लेकर के और ये बलवान बने हुए हैं और मुझे सता रहे हैं। तो कहा उसका जो आश्रय है उसी को ढूंढ लो जिसके बल से ये जो हमको जो है जीत रहे हैं, तब आप देखेंगे वही यहां संकेत किया। इसलिए सारे लोकों की, सारे देवों की और अग्नियों की यहां पर जो है कैसे सत्ता है, इनका प्रादुर्भाव कहां से है, इनका जीवन क्या है और इनकी मृत्यु क्या है, ये पूरा रूप समझने के लिए यहां पर व्याहृतियों को बतलाया और व्याहृतियों से ही बतलाया, इन व्याहृतियों के ही अंतर्गत ये सारा का सारा उत्पन्न हुआ है या उसी के बल पर ये विद्यमान है। और निवृत्ति किससे होगी, तो कहा जब व्याहृतियों का क्या कर लोगे, कहने लगे मित्रता तुम स्वयं जोड़ लोगे, उन व्याहृतियों से तुम स्वयं मित्रता जोड़ लोगे। तो स्वयं मित्रता जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, ये हटे तब मित्रता हो या मित्रता हो तो ये हटाने में हमारा सहयोग करें, तो क्या करना चाहिए पहले, तो कहने लगे पहले इनको समझो और समझ करके फिर जो है आप जो है इनसे जो आसक्ति आदि जो है वो फिर आसक्ति हटेगी और फिर उससे मित्रता जोड़ो कि इसका आश्रय जो है जहां से इसकी उत्पत्ति है उसके मूल को ही पकड़ो, उससे मित्रता करो और जब उससे मित्रता करोगे तो जब वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा तो इन सब को सफाया कर दे और तुम्हारी क्या हो गई, संधि हो जाएगी, मेल हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा, अवेदत्व हो जाएगा और तुम्हें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा समझ। तो अब यहां पर उसी को बतलाने के लिए यहां संकेत किया कि ओम जो है, क्या कहा, ओ सबसे पहले किसको लिया, ओ, और ओम को क्या कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये संकेत किया। ओम क्या है, ये एकाक्षरात्मक जो ओम है यही ब्रह्म है, ऐसा संकेत कहा। ब्रह्म का मतलब क्या, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या चीज है, हमने तो कभी उस ब्रह्म को देखा नहीं है ना, केवल श्रवण से सुन रहे हैं कि ब्रह्म, तो ये ब्रह्म क्या थी, तब क्या संकेत किया, तो श्रवण के ही द्वारा बतलाया ब्रह्म क्या है, किसे ब्रह्म कहते, तो कहने लगे ब्रीह वर्धनार्थक धातु से क्या बना है, का ब्रह्म शब्द बना, जो ब्रह्म शब्द बना है वो वर्धनार्थक धातु से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति, माने जो वृद्ध रूप है अर्थात जिसमें वर्धन क्रिया, क्रिया नहीं है तो क्रिया से रहते, लेकिन समझने के लिए समझो, जो माने इतना वृद्ध है कि बढ़ता ही चला, इसलिए वामतीकार ने जहां संकेत किया तो संकेत करते हुए कहा कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्मत्वात् ब्रह्मत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, वहां संकेत कर दिया, यह वर्धनशील होने के कारण वृद्धि ही इसका स्वभाव है, बृहदता ही इसका स्वभाव है, और बृहदता ही जिसका स्वभाव है वो कौन है, तो कहने लगे आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही वह ब्रह्म गीयते, आत्मा को ही ब्रह्म शब्द से कहा गया, तो आत्मा क्या है, तो फिर आत्मा का लक्षण किया, मैंने आप धातु से आत्मा शब्द बनाया, तो आप धातु व्याप्ति अर्थ में, व्यापक अर्थ में, तो माने जो सर्वत्र विद्यमान है, ध्यान देना, सर्वत्र जिसकी व्यापकता है, ऐसा जो आत्मा उसी का नाम ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहते, तो इसे क्या सिद्ध हुआ, जिसकी सर्वत्र सत्ता है, कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहां जिसकी व्याप्ति या जहां जिसकी सत्ता न हो, और सत्ता वाला होते हुए उसका स्वभाव क्या है, उसका शील क्या है, कहा वो इतना बृहत है कि उसे कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता, उसके आदि अंत को कोई खोजना चाहे तो खोज सकता, इसलिए वो कैसा है, इसलिए उसे कह देते अनंत। तो इस प्रकार ऐसा जो है वो है ब्रह्म, और वो ब्रह्म किसे कह दिया कि ओंकार, ये संकेत, ऐसे उस ब्रह्म को जब जान लोगे तो क्या होगा, तो कहने लगे सर्वत्र तुम्हारी सत्ता हो जाएगी, और तो सत्ता ही तो सब चाहते, तभी तो स्वराज्य मिलेगा, स्वराज्य का मतलब क्या, जहां पर सर्वत्र हमारी सत्ता हो है? और सत्ता हो करके ऐसी सत्ता हो कि जिसमें कभी भी है? न्यूनता न आवे, जिसका कभी ह्रास न हो। तो ऐसी सत्ता कौन है? तो कहने लगे ये ब्रह्म, जो व्यापक है और सर्वत्र विद्यमानता जिसकी है, और कहने लगे कभी भी उसमें ह्रास नहीं हो। उस ब्रह्म को ही यहां उपासना के लिए ओंकार शब्द से कहा। तो ऐसा हो तो सत्तात्मक है और वर्धनशील है। ये सब कहते हुए फिर यहां संकेत करते हैं अकार उकार मकार से, उसकी व्यार्थियों को लेकर के कि वो कैसा है। तो संकेत कर दिया, भू से सत बता दिया, भव से चित बता दिया और स्व से आनंद बता दिया। वह सत चित आनंद रूप है, आनंद ही सुख ही उसका स्वरूप है। किसका? जो सत्ता है उसका, और उस सत्ता में जो प्रकाश है, तो प्रकाशमान जो सत्ता, जो प्रकाश स्वरूप जो सत्ता, वही सत्ता क्या है? का आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसा संकेत किया। तो अब कहने लगे ऐसे सत्ता वाला यदि मैं हो जाऊं है? तो ऐसी सत्ता वाला हो जाऊंगा फिर तो का प्रकाश वाला भी, वो सत्ता तो प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश भी होगा तो ज्ञान भी होगा, और ज्ञान भी होगा अपनी सत्ता का तो वहां पर किसी प्रकार का अज्ञान फिर आ सकेगा नहीं, और जब ज्ञान नहीं आ सकेगा तो ज्ञान के बगैर जो है बीच में कोई व्यवधान आने वाला नहीं, और जब बीच में कोई व्यवधान आने वाला नहीं तो फिर जो उसका जो स्वरूप है आनंद, उसी आनंद स्वरूपता का ही वो आस्वादन करेगा, उससे वो युक्त हो जाएगा, ऐसा उसका संकेत किया। तो कहने लगे फिर ये सब जो बीच में आया वो कहां से आया और कहां आया? क्या संकेत किया? बीच में जो विवधान आया या जो शत्रु आया ये कहां से आया और कैसे आ गया? तब क्या कहा? तो सारे शास्त्र ही संकेत करते ये बीच में आने वाला जो है वो आया ही कैसे है, कहां से आया? तो कहने लगे इसका कोई ठिकाना भी नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं, और सच ये है कि इसकी कोई सत्ता भी न, सत्ता होते हुए कोई ठिकाना न होते हुए भी और फिर भी आ गया। तो फिर क्या कहोगे? कहा ऐसा तो भूत होता है। कौन होता है ऐसा? कौन होता है? भूत, जिसकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, है? और फिर भी आ जाए तो क्या कहते हो? भूत के न हाथ होते हैं न पाए पैर होते हैं, कोई स्वरूप नहीं होता है लेकिन फिर भी आ जाता है, उसी का नाम क्या है? भूत, जो है ही नहीं, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, नहीं मतलब जिसकी सत्ता नहीं है, और सत्ता नहीं है लेकिन फिर भी आ गया, तो बड़ी विलक्षण बात, उसी का नाम क्या है? कहा भूत। तो जो नहीं है लेकिन न होते हुए सत्ता से रहित होते हुए भी जिसकी प्रतीति हो, उसी का नाम क्या है? भूत। और एक भूत नहीं है, कितने भूत हैं? कहा पांच भूत है, और पांच पांच भूत आ जाए तो कहने लगे ये भूत आए कहां से? जिन भूतों को लेकर के ये सारा संसार प्रतीत हो रहा है, भूतों की ये जब स्थिति ये है तो इन से होने वाला जो संसार है प्रतीयमान, तो उसकी स्थिति क्या होगी? जो आश्रय होगा, आश्रय के गुण ही तो जो है आश्रय में रहेंगे, आश्रित में रहेंगे, कारणम गुण है कार्यम आश्रियंते, कारण के गुण ही किसमें? कारण कार्य में आते हैं। तो अब जब भूतों की ये दशा, भूत ऐसे हैं तो क्या होगा? तो कहने लगे तब ये समझना पड़ेगा कि जिनकी सत्ता नहीं है और फिर भी आ जाते हैं तो ये तो बड़ी विलक्षण स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा ये कहां से आ जाते भाई, ये इनकी सत्ता नहीं है और फिर भी आ गए, ऐसी प्रतीति जो हो रही है। तो तो ये जो प्रतीति हुई और उसको लेके सारा बखेड़ा हो गया है, तो कहने लगे ये आ कहां से गए, इनका स्थल क्या है, किस स्थान से ये आते, कहां से आते, ये कहोगे तो क्या कहोगे?